ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ ತಥಾ ದೇಹಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಧೀರಸ್ತತ್ರ ನಮೋಹತಿ. ದೇಹಧಾರಿ ಕೆ ಇಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಮೇ ಜೈಸೆ ಬಾಲಕಪನ್ ಜವಾನಿ ಔರ್ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಐಸೆ ಹೀ ದೂಸರೆ ಶರೀರ ಕಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹೋತಿ ಹೈ. ಇಸ್ ವಿಷಯ ಮೇ ಧೀರ ಮನುಷ್ಯ ಮೋಹಿತ ನಹೀ ಹೋತಾ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ದೇಹಿನೋಸ್ಮಿನ್ ಯಥಾ ದೇಹೆ ಕೌಮಾರಂ ಯೌವನಂ ಜರಾ. ಶರೀರಧಾರಿ ಕೆ ಶರೀರ ಮೇ ಪಹಲೆ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥಾ ಆತಿ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ಯುವಾವಸ್ಥಾ ಆತಿ ಹೈ ಔರ್ ಫಿರ್ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ಆತಿ ಹೈ. तात्पर्य यह है कि शरीर में कभी एक अवस्था नहीं रहती, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है. यहां शरीरधारी के शरीर में ऐसा कहने से सिद्ध होता है कि शरीर ही अलग है और शरीर अलग है. शरीर ही दृष्टा है, शरीर दृश्य है. अतः शरीर में बालकपन आदि अवस्थाओं का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन शरीर ही में नहीं है. तथा देहांतर प्राप्ति ही, जैसे शरीर के कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती हैं, ऐसी देहांतर की अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है. जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता. ऐसे ही शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए. जैसे स्थूल शरीर के रहते हुए कुमार युवा आदि अवस्थाएं होती है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर के रहते रहते देहांतर की प्राप्ति होती है. अर्थात जैसे बालकपन जवानी आदि स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं, ऐसे देहांतर प्राप्ति अर्थात मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण करना ये सूक्ष्म और कारण शरीर की एक अवस्था ही तो है. स्थूल शरीर के रहते रहते कुमार आदि अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, यह तो स्थूल दृष्टि है. सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो अवस्थाओं की तरह स्थूल शरीर में भी परिवर्तन होता रहता है. बाल्यावस्था में जो शरीर था वो युवावस्था में नहीं है. वास्तव में ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण स्थूल शरीर का परिवर्तन न होता हो. ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर में भी प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहांतर रूप से स्पष्ट देखने में आता है. अब ये विचार करना है कि स्थूल शरीर का तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर का हमें ज्ञान नहीं होता. अतः जब सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी नहीं होता, तो उनके परिवर्तन का ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि जैसे स्थूल शरीर का ज्ञान उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है, ऐसे ही सूक्ष्म और कारण शरीर का ज्ञान भी उसकी अवस्थाओं को लेकर होता है. स्थूल शरीर की जागृत, सूक्ष्म शरीर की स्वप्न और कारण शरीर की सुसुप्ति अवस्था मानी जाती है. मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में अपने को स्वप्न में बालक देखता है, युवावस्था में स्वप्न में युवा देखता है और वृद्धावस्था में स्वप्न में वृद्ध देखता है. इससे ये सिद्ध होता है कि स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का भी परिवर्तन होता है. ऐसे ही सुसुप्ति अवस्था बाल्यावस्था में ज्यादा होती है, युवावस्था में कम होती है और वृद्धावस्था में बहुत कम हो जाती है. अतः इससे कारण शरीर का परिवर्तन भी सिद्ध हो गया. दूसरी बात, बाल्यावस्था और युवावस्था में नींद लेने पर शरीर और इंद्रियों में जैसी ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्था में नींद लेने पर नहीं आती. अर्थात वृद्धावस्था में बाल्य और युवा अवस्था जैसा विश्राम नहीं मिलता. इस रीति से भी कारण शरीर का परिवर्तन सिद्ध होता है. जिसको दूसरा देवता पशु पक्षी आदि का शरीर मिलता है उसको इस शरीर में देहाध्यास के कारण मैं यही हूं ऐसा अनुभव होता है तो यह सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण शरीर में स्वभाव प्रकृति रहता है जिसको स्थूल दृष्टि से आदत कहते हैं। वह आदत देवताओं की और होती है, पशु पक्षियों की और होती है और दूसरे योनियों वालों की और होती है। तो ये कारण शरीर का भी परिवर्तन हो गया। अगर शरीर ही का परिवर्तन होता तो अवस्थाओं के बदलने पर मैं वही हूं ऐसा ज्ञान नहीं होता, परंतु अवस्थाओं के बदलने पर भी जो पहले बालक था जवान था वही मैं अब हूं ऐसा ज्ञान होता है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरी में अर्थात स्वयं में परिवर्तन नहीं होता। अब यहां ये शंका हो सकती है कि स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उसका ज्ञान होता है, पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता। पूर्व शरीर का ज्ञान न होने में कारण यह है कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है, उस कष्ट के कारण बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रहती। जैसे लकवा मार जाने पर अधिक वृद्धावस्था होने पर बुद्धि में पहले जैसा ज्ञान नहीं रहता, ऐसे मृत्यु काल में तथा जन्म काल में बहुत बड़ा धक्का लगने पर पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं रह सकता। परंतु जिसकी मृत्यु में ऐसा कष्ट नहीं होता अर्थात शरीर की अवस्थांतर की प्राप्ति की तरह अनायास ही देहांतर की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि में पूर्व जन्म की स्मृति रह सकती है। अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थांतर की प्राप्ति में होता है वैसा ज्ञान देहांतर की प्राप्ति में नहीं होता, परंतु मैं हूं इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान तो सबको रहता है। जैसे सुसुप्ति माने गाढ़ निद्रा में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, पर जगने पर मनुष्य कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आई कि मुझे कुछ पता नहीं रहा। तो कुछ पता नहीं रहा इसका ज्ञान तो है ही, सोने से पहले मैं जो था वही मैं जागने के बाद हूं, तो सुषुप्ति के समय में भी वही था। इस प्रकार अपनी सत्ता का ज्ञान अखंड रूप से निरंतर रहता है। अपनी सत्ता के अभाव का ज्ञान कभी किसी को नहीं होता। शरीरधारी की सत्ता का सद्भाव अखंड रूप से रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और मुक्त अवस्था में वह रहता है। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था में उसको शरीरांतरों का ज्ञान भले ही ना हो, पर मैं तीनों शरीर से अलग हूं ऐसा अनुभव तो होता ही है। धीरस्तत्र न मुह्यति, धीर वही है जिसको सत असत का बोध हो गया है। ऐसा धीर मनुष्य उस विषय में कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि उस धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति होती है। ऊंच नीच मनुष्यों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है और गुणों से संबंध विच्छेद होने पर धीर मनुष्य को देहांतर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यहां तत्र पद का अर्थ देहांतर प्राप्ति के विषय में नहीं है, प्रत्युत देह देही के विषय में है। तात्पर्य यह है कि देह क्या है, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत्य क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है, इस विषय में वह मोहित नहीं होता। देह और देही सर्वथा अलग है, इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता, उसको अपनी असंगता का अखंड ज्ञान रहता है। परिशिष्ट भाव, शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं और सत्ता कभी अनेक रूप होती नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, तथा शरीर में भी वह प्रतिक्षण मर रहा है। वास्तव में गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए तो युवावस्था आ जाती है, युवावस्था मर जाए तो वृद्धावस्था आ जाती है, और वृद्धावस्था मर जाए तो देहांतर अवस्था अर्थात दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की है। बाल, युवा और वृद्धि तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की है, और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म और कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं से अतीत है। अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप वही रहता है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग को अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ महापुरुष कभी किसी अवस्था में मोहित नहीं होता। जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाता है, नरक और स्वर्ग में जाता है। ऐसा कहने मात्र से सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियां छूट जाती है, स्वर्ग और नरक छूट जाते हैं, पर स्वयं शरीरी वही रहता है। योनियां बदलती है, जीव नहीं बदलता, जीव एक रहता है। तभी तो वह अनेक योनियों में अनेक लोकों में जाता रहता है। जो अनेक योनियों में जाता है वह स्वयं किसी के साथ लिप्त थोड़े ही होता है, वो नहीं फंसता। अगर वह लिप्त हो जाए, फंस जाए, तो फिर 84 लाख योनियों को कौन भोगेगा, स्वर्ग और नरक में कौन जाएगा, मुक्त कौन होगा? जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते हैं और मरते रहते हैं। जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं। गीता 2:22 ऐसी अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। तात्पर्य है कि हमारी स्वतंत्रता और असंगता स्वतः सिद्ध है। हमारा जीवन किसी एक शरीर के अधीन नहीं है। असंग होने के कारण ही हम अनेक शरीरों में जाने पर भी वही रहते हैं, पर शरीर के साथ संग मान लेने के कारण हम अनेक शरीरों को धारण करते रहते हैं। मानवा संग तो टिकता नहीं, पर हम नया नया संग पकड़ते रहते हैं। अगर नया संग न पकड़े तो मुक्ति माने असंगता, स्वाधीनता स्वतः सिद्ध है।